गाथा, रूह वही रूह नया।
ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। वो एक नया सिम कार्ड उसमें शायद डालना चाह रही थी, लेकिन उसके पास सिम स्लॉट खोलने की पिन नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर उसको दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस दे दी। थोड़ी देर बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा तो उसने दे दिया। मैंने उससे कहा, अरे सिम तो अभी एक्टिव ही नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने थोड़ा बड़बड़ाते हुए पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, अरे आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही तो एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम उठाई गई है उसकी डिटेल्स पूछे जाएंगे, वो बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर उससे पोलाइटली पूछा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल यूज कर लीजिए। लड़की बोली, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किसके नाम से खरीदी गई है मुझे पता नहीं है। मैंने बोला, एक बार एक्टिव तो होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। तो बोली, ओके, कोशिश करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है, आप जा कह रही हैं? लड़की बोली, दिल्ली। और आप? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? तो वो बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में मेरा कोई काम वाम नहीं है और ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस कैद से? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर किस कैद में थी ये कम से लल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, अरे उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहां घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं तो घर से भाग चुकी हूं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली ही भाग रही हैं आप? आपके साथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो बोली, अरे अकेली नहीं हूं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से जब एक और ट्रेन पकड़ूंगी ना, तो अगले स्टेशन पे वो जनाब मिलेंगे और फिर उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है, उसने कहा। जी, मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई, एक्साइटमेंट में बोली, वाओ, कब, कैसे? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपके घर में है कौन कौन। उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे माँ पापा भाई बहन, हो सकता है भाई हो ही ना, सिर्फ बहनें हो, और ये भी हो सकता है कि बस बहनें हो, और ये भी हो सकता है कि बहनें हो ही ना, बस दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा तो वो बोली, नाम भी कुछ भी हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बड़ी बतूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए उसे कंग्रेचुलेट किया और पूछा, कितने साल की हो गई? तो वो बोली, 18। ओहो, मतलब घर से भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो चुकी है आपकी। वो हंसने लगी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल की है, यानी उससे 17 साल बड़ा हूं। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हैं? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो और तुम्हारे चेहरे पर चिंता के कोई निशान भी नहीं है? इतनी बेफिक्री तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। खुद की तारीफ सुनकर वो बड़ी खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो ना तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, अपना मूड बिल्कुल मत खराब करना, सिर्फ मेरे बारे में और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूं। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी थी? वो हंसकर बोली, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है काफी टैलेंटेड, उसने किस तरह से तुम्हें घर से अकेले रवाना किया, नई सिम दिलवाई, नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेन्स बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ही ना कर पाए, वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने आमी भरी, बोली, बड़े टैलेंटेड हैं वो, ये तो सच है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरी एक बेटी है जो 8 साल की है और एक साल का बेटा है, और उनकी तस्वीर दिखाई उसको। मेरे फोन पर मेरे बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकला, ओह सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने क्यूरियसली पूछा, आपने जॉब क्यों छोड़ी? बच्ची को जब पहली बार गोद में उठाया ना तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया भी कमा लूँ ना तो भी घाटे का सौदा होता। मेरी बात वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर वो बोली, क्या आप अपने बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहां? तब मैंने बताया, काफी टेक्निकल मामले से गुजर कर एक लंबे समय बाद ले जा सकता था, पर उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखने के लिए मैं कुवैत वापस तो गया, लेकिन सिर्फ अपना इस्तीफा देने। वेरी इम्प्रेसिव, वो बोली। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। फिर वो बोली, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे, कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात से मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पे है, बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया हमने भागकर शादी नहीं की थी, और ये भी बताया कि उसके पापा ने मुझे पहली नजर में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, अरे रिजेक्ट करने का तो कोई भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार, कुछ भी। बिल्कुल सही, वो बोली। पर उसने आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने रिजेक्ट किया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू किया। खुशबू ने मुझे बहुत फोर्स किया कि चलो भाग चलते हैं, मेरी वाइफ का नाम खुशबू है, पर मैंने दो टूक मना कर दिया। वो दो दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं, भाग चलते हैं, और मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जबकि लड़की की तो पूरी कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है। इसी के विपरीत जो लड़की प्रेमी के साथ भागती है वो कुलटा कहलाती है। मोहल्ले वाले लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के ना तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में उसकी गलती का कलंक उसके माथे पर से मिट नहीं पाएगा। मैं ये भी मानता हूं कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया यही है। वो अपने नीचे के होंठ दांतों तले पीसने लगे। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने उससे कहा कि अगर उस दिन मैं खुशबू को भगा ले जाता ना, तो उसकी माँ शायद कई दिनों तक पानी भी ना पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऐसा कोई भी काम करूं। मैं जिससे प्रेम करता हूं, उसके माँ बाप तो मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन वो मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी, तो उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई तो कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का तो एक ही मतलब होता है ना, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे के लिए लग्जरी कार दो, सास और ननद को नेकलेस वगैरह दो, बोले ये हमारे यहाँ की रीत है। और लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई तो मैंने तुड़वा डाली, लेकिन इसलिए नहीं कि उससे मेरी शादी हो जाए, बल्कि मैं जानता था कि ऐसे लालची लोगों के साथ ना खुशबू सुरक्षित है और ना कभी वो खुश रह पाएगी, ना उसका परिवार किसी भी तरह से उन डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। उसके बाद मैंने उसके घर वालों को समझा बुझाकर अपने आप को फ्रंट पे किया और हमारी शादी हो गई। पता है, ये सब किस्मत की बात थी। तो लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो तो सच में गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, हाँ जरूरी नहीं है कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, पर ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़ों की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी सही या गलत हो सकता है। काम की बात यहां ये है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। फिर उसने तर्क दिया, हमारा फैसला गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ फैसला जैसा भी हो दोनों का होना चाहिए, बच्चे और माता पिता दोनों की सहमति, और शायद वही सबसे सही है। बुरा मत मानना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। और सच कहूं तो तुम्हें तो प्यार का असली मतलब तक नहीं पता है अभी। तो वो बोली, क्या है प्यार का असली मतलब? तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये सच्चा प्यार है। तुमने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये प्यार है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये प्यार है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में प्यार का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने प्यार को भरा है, क्या वो प्यार में है? यानी तुम जिनके साथ जा रही हो, जिन पर इतना विश्वास करके जा रही हो, क्या वो वाकई इश्क में है? नहीं, वो इश्क में नहीं है, बल्कि वो होशियारी और हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है ना, वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेन्स नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे कि मैं आशिक हूं और वो भी शातिर हो, ये नामुमकिन है। अरे मजनू तो इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम तो कैस था, जो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो शातिर होता तो कैस से मजनू नहीं बन पाता। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली और उसी नहर में उसका लहू बहा था, वो प्यार था। प्यार में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। अरे किसी मांझी ने तो पहाड़ तोड़कर रास्ता तक निकाल लिया, किसी ने ना अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम प्यार नहीं है, प्यार समर्पण को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण ना हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे प्यार में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद ना उनका वजन आधा रह जाएगा, तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएंगे ना पानी पी पाएंगे। तुमको अपने सच्चे आशिक को कम से कम एक बार आजमा कर तो देख लेना था, ना तो उसकी सेहत पे फर्क पड़ता और ना ही दिमाग पर। वो ना बहुत अकलमंद है, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है ना, वो इश्क है नहीं, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया था, ऐसा लग रहा था कि वो तो अब यहां है ही नहीं। उसका दिमाग मानो अतीत में टहलने निकल गया था। मैं अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्रियां उसी की तरफ थीं। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहां से निकली थी और कहां पहुंच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे जाने वाला टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे बोली, मुझे प्लीज एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल उसको दे दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक के रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं घर आ रही हूं। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी, जो मैंने दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस दे दी। गाथा पर अभी आपने सुनी कहानी अनजान मुलाकात, जिसे लिखा अब्बास पठान जी ने और आपके सामने प्रस्तुत किया पल्लवी गर्ग ने।